हम पेशाब करके बाहर आ जाते हैं, कभी ये पेशाब के आने को रब की नेमत समझा है? और इस नेमत की कदर पूछनी है उससे पूछो जिसका पेशाब रुका हुआ है। किस कदर चिल्ला रहा है, किस कदर चीख रहा है, यानी पेशाब का निकल जाना ये अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि पेशाब के अंदर तेजाबियत होती है। और अगर ये पेशाब अंदर ही रहे तो तेजाबियत अंदर फैलती है, जिसकी वजह से इंसान को बहुत तकलीफ होती है। ये पेशाब का आना कितनी बड़ी नेमत है, मैं इसके लिए एक आपको मिसाल देता हूँ। हिकायत में आता है कि एक बादशाह, उसका पेशाब रुक गया, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, डॉक्टर हकीम तबीब सब इकट्ठे हो गए लेकिन कोई अफाका नहीं हो रहा। एक अल्लाह वाला भी आ गया, उसने कहा कि बादशाह सलामत मैं तेरा इलाज करता हूँ। कहा करो। कहने लगा पहले पैसे तय करो। वो कहने लगा मांगो जो मांगते हो, क्योंकि उसको तो नजर आ रहा था तो मैं तो मरा जा रहा हूँ, मैंने सल्तनत या ये माल और दौलत अपने सीने पे रख के थोड़ी लेके जाना है, मुझे आराम आ जाए, मुझे और क्या चाहिए। उसने कहा मांगो क्या? कहने आधी सल्तनत मेरे नाम करो, आधी सल्तनत मेरे नाम। उसने कहा लाओ, आधी सल्तनत उसके नाम कर दी। थोड़ी देर के बाद इस्तंजा खाने गया तो पेशाब आया तो सही, लेकिन थोड़ा आया, खुल के नहीं आया। बाहर आया, कहने लगा जी पेशाब तो आया है लेकिन खुल के नहीं आया। उन्होंने कहा बाकी आधी सल्तनत भी दो दो, फिर खुल के आएगा। उसने कहा लाओ, उसने बाकी आधी सल्तनत भी उसके नाम कर दी। इस्तंजा खाने गया, खुल के पेशाब आ गया। बाहर आया तो कहने लगा अब तुम तख्त पर बैठो, मैं नीचे बैठूंगा, अब तुम इस तख्त के मालिक हो। वो अल्लाह वाला तख्त के ऊपर चढ़ा और उसको एक ठोकर मार के कहता है मैंने इस तख्त को क्या करना जिसकी कीमत मेरे नजदीक पेशाब के चंद कतरे रखी गई, मैंने इस तख्त को क्या करना। यार दूर ना जाएं, हम थूकते हैं, कोई इधर थूक रहा है, कोई इधर थूक रहा है, क्या कभी थूक के आने को अल्लाह की नेमत समझा है? मैं बतला सिर्फ ये रहा हूं कि हम नेमतें तो वो गिने जिसको नेमतों का पता हो, हम इसको नेमत समझते ही नहीं है। और ये थूक इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि एक बंदा, उसने पता नहीं कितने लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया, मुंह में थूक बन जाए, नहीं बन रही। एक दिन बेचारा सर्द आह लेकर कहता है हाय मैं क्या करूं, मेरे मुंह में थूक नहीं बन रही। एक बंदा कहे नहीं बांधी तो ना बने यार, क्यों हो गया? कहने लगा बेवकूफ, तेरे मुंह में बन रही है, तुझे इसकी कदर नहीं है, मुझसे पूछो ये कितनी बड़ी नेमत है। ये थूक जो है ना लुआब, इसके अंदर एसिडिटीज होती है, तेजाबियत होती है। जब खाना बंदा खाता है तो ये खाने के साथ मिक्स होती है और खाना मेदे में जाकर हजम होता है। कहने लगा मेरे मुंह में थूक नहीं बनता, मैं जैसा खाना खाता हूं वैसे ही निकल जाते, हजम होता ही नहीं। क्या हमने कभी इसको नेमत समझा है? ये हाथ हमारा कितनी बड़ी नेमत है। एक दिन हजरत साहब, मैंने ऐसे बैठा हुआ सोच रहा था, यकीन जानो मेरा इतना ईमान ताज़ा हुआ, इतना ईमान ताज़ा हुआ। अल्लाह ताला हर मुसलमान को बुरे वक्त से महफूज रखे, मैं समझाने के लिए एक बात अर्ज करता हूँ। एक बंदा उसकी टांग कट जाती है, वो मसनूई टांग लगाता है, होते हैं ना मसनूई टांग लगाते हैं। अच्छा वो टांग आए दिन ख़राब हुई रहती है। अच्छा फिर वक्त के साथ साथ बंदे का जिस्म बढ़ता है, वो टांग छोटी हो जाती है, फिर जाता है बड़ी करवा के आता है। यार जो रब ने हमें टांग दी खुद बखुद ही बढ़ रही है, क्या ख्याल है? जब छोटा बच्चा होता है कितनी टांग होती है, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है टांग भी बढ़ती जा रही है, हाथ बढ़ते जा रहे हैं, हर चीज में वो इजाफा होता जा रहा है। यानी ये अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि करोड़ों अरबों रुपया भी खर्च कर दो ऐसा हाथ कोई बना सकता है? एक बंदा ना बड़ा मारा हारा, वो कहने लगा छड़ो जी रब ने मैं दिता की है, मेरे पल्ले है की है। वो कहने लगा भाई अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, हर हाल में शुक्र अदा करो। वो कहना जी कादा शुक्रिया अदा करिए, मेरे पास तो अल्लाह का दिया एक पाई की कोई चीज नहीं है। कहने लगा तेरे पास कोई नहीं है? कहने लगा नहीं। कहने लगा ये दोनों आंखें निकाल के मुझे दे दो, 10 लाख इसका ले लो, ये हाथ काट के दे दो, 20 लाख इसका ले लो, ये टांग काट के दे दो, 40 लाख इसका ले लो। वो कहने लगा जा जा, आया बड़ा सौदे बास, मैं क्यों दे दूं तुम्हें आंखें? कहने लगा तू तो कहता रब ने मुझे एक पाई की चीज नहीं दी, तुझे तो करोड़ों अरबों का मालिक बनाया हुआ है। ये हाथ कितनी बड़ी नेमत है, ये आंख कितनी बड़ी नेमत है। यार इस नेमत की कदर पूछनी है तो अंधे से पूछ के देखो, जिसके लिए दुनिया ही तारीख है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि बंदा नेमतें तो वो गिने जिसको पता हो ये नेमत है, हमें तो करोड़ों अरबों नेमतें हैं जिनको हम नेमत समझते ही नहीं, और वो इतनी बड़ी नेमत है उसकी कदर जब होती है जब बंदा उससे महरूम हो जाता है। ये कान कितनी बड़ी नेमत है, ये पांव कितनी बड़ी नेमत है, ये जमीन, ये आसमान, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, फिर अल्लाह ताला ने हमारे अंदर जो निजाम बनाया हुआ है, ये कितनी बड़ी नेमत है। कभी थोड़ा सा गौर करो यार, है एक लुकमा है रोटी का, मुंह में जाता है, अल्लाह ताला ने इस लुकमे को चबाने के लिए दांत बनाए हैं, वो सख्त चीज को भी चबा रहे हैं, नरम को भी चबा रहे हैं, हड्डी को भी चबा रहे हैं। यार इन्हीं दांतों के दरमियान जुबान है, इन दांतों के दरमियान जुबान महफूज है। कौन महफूज रख रहा है? ये अल्लाह की दात है। फिर ये लुकमा चबाने के बाद एक हवा की नाली है, एक खुराक वाली नाली है, दोनों साथ साथ ही हैं। अगर हवा वाली नाली में लुकमा चला जाए, नहीं जाने दे रहा, कौन नहीं जाने दे रहा, वो अल्लाह की जात साथ साथ ही है ना। फिर मेदे में जाता है, किस तरह हजम हो रहा है, इसी लुकमे से खून भी बन रहा है, सुफरा भी बन रहा है, बोलो बराज भी बन रहा है, कौन बना रहा है, इसी से गोश्त बन रहा है, इसी से हड्डियां बन रही हैं। मेरे दादा जान अल्लाह बख्शे, वो कहा करते थे कि ये हमारे अंदर एक मशीनरी है, मशीनरी है ना, कहने लगे ये मशीनरी खराब हो जाए रिपेयर करने वाले को करोड़ों रुपया दे रहे हो, देते कि नहीं देते? ये मशीनरी खराब हो जाए लाखों करोड़ों रुपया लोगों को दे देते हो, अरे जिसने मशीनरी बनाई है उसको क्या दे रहे हो? उसके आगे सजदा शुक्र भी नहीं अदा करते यार, उसके आगे नमाज भी नहीं पढ़ते, झुकते भी नहीं हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी इतनी कीमती नेमतें अता की कि उसकी कीमत अदा हो ही नहीं सकती। क्यों हो सकती है? हो ही नहीं सकती। लेकिन एक बात याद रखो, अल्लाह ताला ने इतनी नेमतों से नवाजा, किसी नेमत पर एहसान नहीं जतलाया। कहीं ये नहीं कहा मेरा एहसान मानो मैंने तुम्हें आंखें अता की, मेरा एहसान मानो मैंने तुम्हें कान अता किए, मेरा एहसान मानो मैंने तुम्हें फल दिए, खाने के लिए खुराक दी। कहीं ये नहीं फरमाया। अगर एहसान जतलाए तो सिर्फ एक ही एहसान जतलाया, फरमाया लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअसा फीहिम रसूला, ऐ मोमिनो मेरा एहसान मानो कि मैंने अपना महबूब तुम्हें अता फरमा दिया। अब सवाल ये पैदा होता है, सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने इतनी इतनी कीमती नेमतें दी, एहसान नहीं जतलाया, महबूब की बारी आई, एहसान क्यों जतला दिया? सोचने वाली बात है ना। ये जमीन, ये आसमान, ये सूरज, ये सितारे, ये तरह तरह की नेमतें, बड़ी बड़ी कीमती नेमतें थी, लेकिन एहसान नहीं जतलाया, महबूब की बारी आई तो एहसान जतला दिया। तो एक बुजुर्ग ने इसकी बड़ी प्यारी मिसाल दी और जवाब दिया, फरमाने लगे आपके पास अगर कोई फकीर आ जाए मांगने वाला, वो कहता जी मैं भूखा हूँ, मुझे खाना चाहिए, आप जेब में से एक रुपये का सिक्का निकाल के उसको दे दो और फिर कहो मैंने तेरे ऊपर एहसान किया, वो कहेगा जी पैसा वापस ही ले लो, इसके इससे तो एक रोटी भी नहीं आएगी, ये पैसा दे के मुझे एक रुपया दे के क्या एहसान जतला रहे हो? यार एहसान तो जब है, वो कहता है मैंने खाना खाना, आप 1000 का नोट निकाल के उसके हाथ पे रखो, कोई वैल्यूएबल चीज़ दो, फिर तो बात बनती है यार एहसान किया है। लेकिन 1000 रुपये की मेरे नज़दीक वैल्यू होगी, जो अमीर आदमी है उसके नज़दीक 1000 की वैल्यू नहीं है, उसके नज़दीक 1,00,000 रुपये की वैल्यू होगी। लेकिन जो उससे अमीर आदमी है उसके नज़दीक 1,00,000 की कोई वैल्यू नहीं है, उसके नज़दीक करोड़ की वैल्यू होगी। जो उससे ज़्यादा अमीर है वो करोड़ को कुछ नहीं समझता। तो रब ताला ने इरशाद फरमाया तुम्हारे नज़दीक हाथ बहुत बड़ा कीमती है, लेकिन मेरे नज़दीक इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हारे नज़दीक आँख बड़ी कीमती है, मेरे नज़दीक वैल्यूएबल नहीं है। तुम्हारे नज़दीक ये ज़मीन आसमान बड़ा कीमती है, लेकिन मेरे अंदर मेरे नज़दीक वैल्यूएबल नहीं है। फरमाए पूरी कायनात में अगर कोई वैल्यूएबल शय है तो मेरे महबूब की ज़ात है। इसको आप यूं समझें, फरमाते हैं कि एक मरतबा ज़मीन और आसमान के दरमियान तकरार हो गई। ज़मीन कहती है कि मैं अफजल हूँ, आसमान कहता है मैं अफजल हूँ। दोनों अपनी अपनी फजीलत पर दलाइल दे रहे हैं। आसमान कहता है मेरे ऊपर अर्श है, लौ है, कुर्सी है, चांद, सितारे, सूरज मेरे ऊपर ही है। ज़मीन अपने दलाइल दे रही है कि मेरे ऊपर خانہ کعبہ ہے، میرے اوپر مسجدیں ہیں، میرے اوپر صفا مروہ ہے، آب زمزم شریف ہے، ہر کوئی اپنے اپنے دلائل دے رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ فیصلہ نہیں ہو پاتا، دونوں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، مالک مولا تو فیصلہ کر دے افضل کون ہے؟ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نہ زمین افضل ہے نہ آسمان افضل ہے، افضل میرے محبوب کی ذات ہے۔ وہ زمین پر آ جائے تو زمین افضل ہو جائے، آسمان پر تشریف لے جائے تو آسمان افضل ہو جائے۔ ارے اللہ کا محبوب جس شہر میں آ جائے وہ شہر سارے شہروں سے افضل ہو جائے، اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس قبیلے میں آ جائے وہ قبیلہ افضل ہو جائے، اور جس مکان میں آ جائے وہ مکان افضل ہو جائے، ارے جس غار میں آ جائیں وہ غار افضل ہو جائے، جن یاروں میں آ جائیں وہ یار افضل ہو جائے، جس آل میں آ جائیں وہ آل افضل ہو جائے، ارے جس امت میں آ جائے وہ امت ساری امتوں سے افضل ہو جائے۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، جتنی بھی امتیں آئی ہیں تم ان میں سب سے افضل ہو۔ یہ ہمیں جو افضلیت کا تاج ملا ہے وہ کس وجہ سے ملا ہے؟ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملا ہے۔ ارے یوں سمجھو ایک بہت قیمتی ہیرا ہے، وہ ہیرا اگر قمیض کے اندر آ جائے تو قمیض کی ویلیو بڑھ جائے، صندوق میں آ جائے تو صندوق کی ویلیو بڑھ جائے، مکان میں آ جائے تو مکان کی ویلیو بڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل اور اعلیٰ اس کے محبوب کی ذات ہے، بس جہاں وہ آ جائے وہ جگہ افضل ہو جائے۔ اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا ہے، شکر خدا محمدی ہم کو بنایا امتی، ارے کس کو ملا یہ مرتبہ، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس نعمت کا صحیح معنوں میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نعمت کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے اس مقصد کو بھی ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا اللہ۔